समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की भी हलचल होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूँ अलका सिंह और मेरे साथ हैं रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
नमस्कार एंड हेलो अलका एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, एज एवरी मॉर्निंग टुडे आल्सो वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी विल बी गिविंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज I wouldn't say some historical information, but a lot of historical information related to this day, that is the 25th of April. लेकिन पहले हेडलाइन से शुरुआत करते हैं।
बिल्कुल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी दलों के नेताओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी नेताओं ने आतंकवाद से लड़ाई और सरकार की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि सभी दलों ने आतंकी हमले पर चिंता व्यक्त की और समर्थन दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि अधिकारियों ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधन उपाय की भी जानकारी दी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी दलों ने आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की सभी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सरकार को किसी तरह की कार्रवाई करने का पूरा समर्थन दिया है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय को समर्थन देंगे। 15 विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक लगभग 2 घंटे चली।
Prime Minister Narendra Modi has said that India will identify, trace and punish every terrorist and their backers. He said that India will pursue them to the ends of the earth. The Prime Minister said terrorism will not go unpunished. He said that every effort will be made to ensure that justice is done and the entire nation is firm in this resolve. The Prime Minister said this while addressing a public gathering in Madhubani district on the occasion of National Panchayati Raj Day yesterday.
I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time.
Prime Minister Modi further said that the country's spirit will never be broken by terrorism.
ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
The Prime Minister also emphasized that everyone who believes in humanity is with India. The Prime Minister stated that the country is saddened and in pain after this incident and stands with the families of the victims.
इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया. उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था. आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कश्मीर में आतंकी हमले के बाद तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है. महासचिव के प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दोनों देशों की सरकारों से पूरा संयम बरतने की अपील करता है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दों को आपसी बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल पाकिस्तान ने कहा कि वो भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद रखेगा. पाकिस्तान के इस प्रतिबंध के बाद भारत के विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से लेकर नहीं गुजरेंगे. सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के इस प्रतिबंध के बाद उत्तरी अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप और मध्य पूर्व आने जाने वाली एयर इंडिया और अन्य विमानन कंपनियों को उड़ानों को वैकल्पिक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. पाकिस्तान के इस फैसले से पाकिस्तान की भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं. मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अवधि एयरलाइनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्ग पर निर्भर करेगी. पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र महत्वपूर्ण है जिसका भारतीय विमान कंपनियां बड़े पैमाने पर उपयोग करती है. भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है. भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा भी इस महीने की 27 तारीख से रद्द कर दिए जाएंगे. इसके अलावा मेडिकल वीजा भी इस महीने की 29 तारीख तक ही वैध रहेंगे. इस बीच सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Vatican City from today to attend the state funeral of Pope Francis. President Murmu will also offer condolences on behalf of the government and people of India. In a statement, External Affairs Ministry said, President will pay homage to Pope Francis by laying a wreath at Basilica of St. Peter today. Tomorrow, President Murmu will attend the funeral mass, which will be attended by dignitaries from around the world. Pope Francis passed away on 21st of this month. Prime Minister Narendra Modi had expressed condolences at the demise and noted that his affection for the people of India will always be cherished. India has declared 3 days of state mourning on the passing of Pope Francis.
बिल्कुल. और रेनु, योग जो होता है वो शरीर को निरोग रखता है.
बिल्कुल.
और योग दिवस भी आने ही वाला है जून में
जी.
और दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही है. योगासन भारत द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता 27 तारीख तक चलेगी. इसमें 21 एशियाई देशों के 170 से अधिक एथलीट भाग लेंगे. ये आयोजन योगासन को वैश्विक खेल के रूप में बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है. विश्व योगासन महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है और अब इसे खेल का दर्जा मिल गया है.
बिल्कुल. एंड मोर ऑन स्पोर्ट्स. इन आईपीएल T20 क्रिकेट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफीटेड राजस्थान रॉयल्स बाय 11 रन्स एट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु लास्ट नाइट. टुडे चेन्नई सुपर किंग्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद विल क्लैश एट एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई एट 7:30 PM.
और अब समय है आज सवेरे में 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का.
लेकिन,
तो सबसे पहले
यस, आई विल बिगिन विद चेन्नई मेट्रो. अलका,
बिल्कुल.
द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट ऑफ चेन्नई इज होल्डिंग अ वॉक इन इंटरव्यू कैंप टुडे. रश्मि सिद्धार्थ जगादे, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेड दैट प्राइवेट इंडस्ट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द कैंप्स टू रिक्रूट एप्लीकेंट्स फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 2 PM. The camp will be held for those who completed 8th, 10th and 12th standards and also ITI diploma candidates. The camp is also for the undergraduates who had completed arts and science degrees. More than 20 private players will be recruiting candidates in this employment camp. Applicants can also get more information in the tnprivatejobs.tn.gov.in website. और एक और न्यूज है चेन्नई मेट्रो सेल का. द जनरल मैनेजर ऑफ सदर्न रेलवेज आर एन सिंह हेल्ड अ मीटिंग विद द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मदुरई डिवीजन ऑन थर्सडे. ही डिटेल्ड द रीसेंट अचीवमेंट्स एंड वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन टू एनहांस पैसेंजर एमिनिटीज अक्रॉस द जोन इन जनरल एंड मदुरई डिवीजन. And let's go on to you for news on Delhi.
बिल्कुल, दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने दिल्ली सचिवालय में लैंडफिल साइट्स पर कूड़े के पहाड़ को जल्द खत्म करने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए. दिल्ली में वर्तमान में भलसवा, गाजीपुर और ओखला में कूड़े के पहाड़ हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है. बैठक के दौरान तीन प्रमुख लैंडफिल साइट्स पर तेजी से काम करने के लिए विस्तृत एक्शन प्लान भी प्रस्तुत किया गया. और रेणु, दिल्ली में जल भराव, बारिश का मौसम भी, गर्मी आ गई है उसके बाद बारिश का भी होगा. बिल्कुल, तो जल भराव की समस्या तो होती ही है. तो दिल्ली में जल भराव, ड्रेनेज, डीसिल्टिंग, फ्लाईओवर, सड़क और फुटपाथ से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समीक्षा बैठक की. इस बैठक में लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल हुए. इस अवसर पर श्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली को जल भराव से मुक्त करना केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है. और रेणु, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और सरकार को मजबूत समर्थन देने हेतु दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठनों द्वारा आज दिल्ली व्यापार बंद का आह्वान किया गया है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने इस आह्वान को पूर्ण समर्थन देते हुए दिल्ली के समस्त व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखें और शांतिपूर्ण तरीके से बंद का पालन करें. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक के सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये बंद कोई विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक श्रद्धांजलि और राष्ट्र के प्रति एकजुटता का प्रतीक है.
I have two news from Bengaluru, Alka.
Bilkul.
The Karnataka Governor Thavarchand Gehlot paid final respects to Bharat Bhushan killed in the recent terrorist attack in Pahalgam. The last rites were performed in Bengaluru yesterday. The governor offered his condolences and words of solace to the grieving family, expressing solidarity during their time of immense loss. In a statement issued on this occasion, the governor stressed that such heinous acts must not be tolerated. He expressed confidence that India will give a fitting response to those responsible for this cowardly act. He appreciated the Karnataka state government, which facilitated the safe return of tourists stranded in Jammu and Kashmir. And in other news, the new Chief General Manager of NABARD Karnataka Regional Office, Dr. Sudhendra Babu, took charge of office yesterday. He served as the Vice Principal or General Manager of the National Bank Staff College at Lucknow. Dr. Babu has MSc and PhD in Floriculture and Landscaping from Indian Agricultural Research Institute in Delhi.
बिल्कुल, और बात कर ले मुंबई की तो मुंबई का सर जेजे अस्पताल महाराष्ट्र का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने शवों के सम्मानजनक और स्वच्छ परिवहन के लिए शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पेश किए हैं. अस्पताल ने शव परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दो अत्याधुनिक ईवी का अनावरण किया. पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर चलने वाले ये वाहन राज्य के हरित लक्ष्यों के अनुरूप है. साथ ही इनमें मैनुअल हैंडलिंग को कम करने के लिए हाइड्रोलिक और रोलर सिस्टम भी शामिल किया गया है. और एक और खबर रेनू, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने विमुक्त जनजातियों और घुमंतू जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए 17 मई 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 75 छात्र जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए शीर्ष 200 क्यूएस रैंकिंग में सूचीबद्ध विदेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया गया है या दिया जाएगा, उन्हें विदेशी छात्रवृत्ति दी जाएगी. और इसकी जानकारी जो है वो छात्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in पर जा सकते हैं.
जी, एंड मूविंग ऑन टू हैदराबाद मेट्रो, Amidst tight security arrangements, the stage is set for the Bharat Summit, an initiative of the Telangana state government to showcase it as a model state with progressive thinking to the global audience today. The two-day event is expected to have participation of over 450 delegates representing different fields from 100 countries across the world. Heads of governments, members of parliaments, representatives of political parties, chiefs of major corporates and those reputed as think tanks in different domains will participate in the event, and the Bharat Summit will have panel discussions on important issues like gender justice and a feminist future, fact versus fiction, countering disinformation, youth and politics of tomorrow, and shaping new multilateralism on the first day. This will be followed by debates on key subjects like overcoming polarization with pluralism, diversity and respect, accelerating climate justice, economic justice on uncertain times, and peace and justice in a multipolar world on the second day. So that is all that I have from the metro. Let's move on to you, Alka, for some news from Kolkata.
Bilkul, Kolkata ki baat kar le, to usse pehle Renu aap se ek baat puchna chahenge. Jab 10th ka result nikla tha,
जी,
तो वो दिन कैसा था?
मैं बहुत डरी हुई थी.
बिल्कुल. तो वैसे ही पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड की कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2 मई को सुबह 9 बजे घोषित किया जाएगा. वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रिजल्ट सुबह 9:45 से उपलब्ध होगा. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विभिन्न कैंप कार्यालयों से स्कूलों को उस दिन सुबह 10 बजे से अंक पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे.
जी,
आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और रेनू के साथ, और अब समय है मौसम का हाल जानने का. तो सबसे पहले बात कर लें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की. दिल्ली की बात करें तो आज लू चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है. आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और जॉय सिटी कोलकाता की बात करें तो आज आसमान साफ रहेगा लेकिन दिन के गर्म रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
एंड अलका, बिफोर आई मूव ऑन टू द थ्री अदर मेट्रोज एंड टेल यू अबाउट द टेम्परेचर ओवर देयर, आप एक वर्ड बार बार यूज कर रहे थे, सेल्सियस.
बिल्कुल.
सो टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ एंडर्स सेल्सियस, हु वाज अ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन. ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एट उपसला यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1730 टू 1744, बट ट्रेवल्ड फ्रॉम 1732 टू 1735 विजिटिंग नोटेबल ऑब्जर्वेटरी in Germany, Italy and France, and he founded the Uppsala Astronomical Observatory in 1741 and in 1742 proposed the centigrade temperature scale, which was later renamed the Celsius in his honor.
Bilkul.
So now that I've given information about Celsius, तो हम अब पढ़ते हैं कि हमारे तीनों मेट्रोज में आज का टेम्परेचर कैसा रहने वाला है. So Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 36 degrees. And Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 29 degrees and a maximum of 41 degrees Celsius.
और अब समय इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई.
जी,
आज 25 अप्रैल है. और रेनु, आपको वो समय याद है जब टेलीविजन
जी
ब्लैक एंड व्हाइट था?
बिल्कुल.
और उसके बाद रंगीन हुआ
जी.
और वो जो टेलीविजन का जमाना था उसमें शाम के वक्त एंटीना की दिशा बदलना और चिल्लाकर पूछना कि आया, तो कहते थे नहीं नहीं थोड़ा और
घुमाइए.
बिल्कुल. और वो ऊपर वाला भी परेशान, नीचे वाला भी परेशान, लेकिन जब वो घूम जाता था पूरी तरह से और जब पिक्चर सही आने लगती थी तो जो चेहरे पे मुस्कान होती थी उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता और कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में. और टेलीविजन की तस्वीर साफ आ जाती थी. ये बात पुरानी जरूर है लेकिन ज्यादातर लोगों के जहन में आज
भी ताज़ा है. जो जब वो तस्वीर आती थी तो एक लोगो आया करता था और उसके साथ एक म्यूजिक भी बजा करता था.
बिल्कुल
जी. तो क्यों ना हम पहले वो म्यूजिक सुन ले और फिर इसके बारे में बात करें.
Thank you. आज ही के दिन 25 अप्रैल 1982 को वो दिन था जो दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया था।
जी, सो लेट्स गो ऑन टू मोर डेट्स इन हिस्ट्री टुडे अलका।
बिल्कुल, 1809 की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए और 1905 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को मताधिकार मिला और 1953 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रीक ने डीएनए की संरचना की व्याख्या कर जीव विज्ञान की इस बुनियादी पहेली का जवाब खोज लिया कि जीव अपना वंश कैसे बढ़ाते हैं और इन दोनों वैज्ञानिकों को उनकी इस खोज के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1954 में बेल लैब्स ने न्यूयॉर्क में पहली बार सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की और 1957 में सोडियम परमाणु रिएक्टर पहली बार संचालित किया गया।
एंड यू नो व्हाट अलका, टुडे वी आर ऑब्जर्विंग वर्ल्ड पेंगुइन डे।
बिल्कुल,
कितना प्यारा सा ये बर्ड है। दिस इज अ यूनिक बर्ड ऑन आवर प्लैनेट। सो एंड यू नो व्हाट, देयर आर 18 स्पीसीज ऑफ पेंगुइन्स एंड ऑल देयर नेचुरल हैबिटेट्स आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एंड और थोड़ी सी जानकारी देंगे, डिड यू नो दैट द एम्परर पेंगुइन इज द बिगेस्ट ऑफ द 18 पेंगुइन स्पीसीज एंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स। और अगर हम 2017 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग चलें तो अप्रोक्सीमेटली 5,97,000 एडल्ट एम्परर्स टुडे फ्रॉम birth, they spend their entire life around the Antarctic city, and these wondrous critters also incubate their eggs like other birds, only they can do so in temperatures nearing -50 degrees. Oh my god, that's very cold. And another day that we are observing today is the World Malaria Day, which is an international observance commemorated every year on 25th April and recognizes global efforts to control malaria. Globally, 3.3 billion people in 106 countries are at risk of malaria, and in 2012, malaria caused an estimated 6,27,000 deaths, mostly among African children. और आज का जो वर्ल्ड मलेरिया डे थीम है वो है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट।
बिल्कुल, और अब उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की बात कर लें जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र को, आज उनकी पुण्यतिथि है। राजन मिश्र और साजन मिश्र दोनों भाइयों का कला प्रदर्शन जो था वो पूरे विश्व में प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की। और राजन मिश्र प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक तो हैं ही, 400 साल की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दोनों भाइयों ने, राजन मिश्र और साजन मिश्र ने, भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें संगीत जगत में बहुत ही सम्मान से देखा जाता है और बनारस घराने में जन्मे पंडित राजन और साजन मिश्र को संगीत की शिक्षा उनके दादाजी पंडित बड़े राम जी और पिता पंडित हनुमान मिश्र ने दी थी। और आज ही के दिन 25 अप्रैल 2021 को इनका देहावसान हुआ और 2007 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। और अब बात कर लें उस क्रांतिकारी की, जो सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी उज्ज्वला मजुमदार को, महिला क्रांतिकारी, इनका जन्म आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1914 में ढाका में, इनकी आज पुण्यतिथि है। इन्होंने 8 मई 1934 को गवर्नर एंडरसन को पर गोली चलाने के में साथ दिया था और 18 मई 1934 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20 साल का सश्रम कारावास की इन्हें सजा सुनाई गई थी। और 1937 में उज्ज्वला मजुमदार गांधी जी के प्रयास से रिहा हो पाई थी। और आज ही के दिन 25 अप्रैल 1992 को उज्ज्वला मजुमदार ने अंतिम सांस ली। और अब बात कर लें बड़े गुलाम अली खां की।
जी बिल्कुल
बिल्कुल, आज इनकी पुण्यतिथि है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की, जिनकी गणना देश के महानतम गायकों और संगीतज्ञों में की जाती है। वे विलक्षण मधुर स्वर के स्वामी थे।
प्रेम जो गण बन गया
रेनु, जब की आसिफ मुगल आजम बना रहे थे तब उनकी दिली तमन्ना थी कि इसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का भी योगदान हो।
Yes, we have heard about this story.
बिल्कुल, और बड़े गुलाम अली खां फिल्मों के लिए गाते नहीं थे तो की आसिफ ने उन्हें अनुरोध किया तो उस्ताद ने सोचा कि कोई ऐसी रकम मांगू, कोई ऐसी कीमत मांगू जो या तो की आसिफ दे ना पाए या उन्हें देने में मुश्किल हो।
Yes.
तो उन्होंने कहा 25,000 और की आसिफ ने कहा 25,001 और मामला तय हो गया। और ये जो धुन आप सुन रहे हैं ये वही है, और उस समय रेनू बता दें कि लता और रफी जैसे गायकों को भी 500 रुपए मिलता
था। Oh my God, yes.
बिल्कुल, और बड़े गुलाम अली खां का जन्म 2 अप्रैल 1902 को हुआ था और मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति जो थी वो इन्हें संगीत से प्राप्त हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद बड़े गुलाम अली खां पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन संगीत के इस उपासक को पाकिस्तान का माहौल कतई पसंद नहीं आया और नतीजतन वे जल्दी ही भारत आ गए।
Yes, and moving on to birthdays and birth anniversaries, today is the birthday of American actor Alfredo James Al Pacino, jise ki hum jante hain. In a career spanning more than 50 years, Pacino is widely regarded as one of the greatest actors of all time and has received many accolades. Agar hum baat kare to Academy Awards, Tony Awards, Primetime Emmy Awards and a triple crown of acting. But here we're going to listen to a beautiful dialogue in this Academy Award winning role, Lieutenant Colonel Frank Slade, jo ki Al Pacino ne nibhaya tha, where he defends this boy Charlie in a passionate speech that questions what truly makes a bad man. So let's listen into this dialogue from the movie Scent of a Woman.
Out of order, I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old, I'm too tired, I'm too fucking blind. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. Out of order. Who the hell do you think you're talking to? I've been around, you know. There was a time I could see, and I have seen. Boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight.
Oh, that was some marvelous dialogue.
Bilkul.
So today is also the birthday of Kamal Khan, who is an Indian singer known for his work as a playback singer in Bollywood films. He won the reality singing competition Sare Gama Pa Singing Superstar in 2010. And here let's listen into this song Ishq Sufiana from the
सांसों में लिपटा है इश्क, कोई आंखों में दिखता है इश्क, मेरे दिल को
और आज ही हम याद कर रहे हैं पंडित मुखराम शर्मा को, जो भारतीय सिनेमा में कथा, पटकथा और संवाद लेखक के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म 30 मई 1909 को हुआ था। और रेनू आपको बताएं कि वे जो भी लिखते थे उसका ट्रैक रखने के लिए वितरक और निर्माता उनके घर के नियमित चक्कर लगाते थे और उनके पास अपनी पसंद की निर्माता निर्देशकों को भी अपनी कहानी को बेचने का विशेष अधिकार प्राप्त था। और इनकी फिल्में जो हैं वो जिनमें इन्होंने पटकथा और लिखी हैं, वचन, घराना, धूल का फूल, दादी माँ, मैं सुंदर हूँ, संतान, पतंगा, दो कलियां, राजा और रंक प्रमुख हैं।
उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ,
And today is the birthday of Indian playback singer Arijit Singh, a leading figure in contemporary Hindi film music. He is the recipient of several accolades, including 2 National Film Awards and 7 Filmfare Awards. Here, the song that we are listening to is the beautiful patriotic song sung by Arijit Singh from Meghna Gulzar's film Razi. So let's listen in.
और रेनु घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से अनुमति लिए, तो अलका सिंह और रेनु कटारिया को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। और
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।
जहां रहूं जहां मैं।